हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं।
हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं।
हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते।
ओम शांति। हम सभी के बीच में प्यारे बाबा के अमूल्य रतन आदरणीय राजयोगिनी प्रभा दीदी जी उपस्थित है। सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। प्रभा दीदी, आपका इस सभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपने बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में मथुरा में रहते हुए प्राप्त किया हुआ है। आपका ये परम सौभाग्य है कि संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनका आपने साकार में अच्छी तरह से पालना ली हुई है, आज का आपका विषय है वाहरे मेरा भाग्य वाहा। आदरणीय राजयोगिनी प्रभावेन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे प्यारे बाबा के भाग्यशाली विशेष मधुबन शांतिवन बाबा की सेवा में उपस्थित सभी भाग्यशाली आत्माएं, अभी हम सभी बाबा की याद में गीत सुन रहे थे कि भगवान ने हम सभी सौभाग्यशाली रत्नों को अपना बना करके पद्मा पद्म भाग्यशाली हम सबको बनाया है। हम सब आत्माओं का भाग्य इतना श्रेष्ठ और इतना ऊंचा है, जो मनुष्य आत्माएं तो क्या, संसार की महान आत्माएं तो क्या, लेकिन स्वयं भगवान हम बच्चों के भाग्य का गुणगायन करते हैं, क्योंकि भगवान ने ही हम सभी भाग्यशाली आत्माओं का भाग्य संवारा है और भाग्य बनाया है। हम सभी भाग्यशाली आत्माएं भगवान के बन गए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा भाग्य है। इस भाग्य के आगे देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं जो संसार में कहलाती हैं, उन सब का भाग्य भी हमारे भाग्य के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सभी का भाग्य स्वयं भगवान ने अपना बना करके बनाया है। जब भी बाबा आता है तो हम सभी के भाग्य के ही गुण गायन करते हैं और हम सब भी अपने भाग्य के गुण भगवान से सुनकर उस खुशी में और नशे में आ जाते हैं। और ये खुशी और नशा हम बच्चों से श्रेष्ठ कार्य पुण्य कार्य करा लेता है। तो हम सभी भाग्यशाली आत्माएं जितने महान हैं उतना अपने भाग्य की अगर हम स्मृति में रहें तो हमारा पुरुषार्थ कोई भी मुश्किल नहीं है। हम सबको पुरुषार्थ भी सहज लगता है। मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य को क्या चाहिए? भाग्य ही चाहिए। और हमारा भाग्य किस आधार से बनता है? बाबा हमारा भाग्य किस आधार से बना रहा है? जी लौकिक जीवन के अंदर भी जो भाग्यवान अपने को समझते हैं वो अपने जीवन में तीन बातों के आधार से अपने को भाग्यशाली मानते हैं। एक खुशी, एक खुराक और खजाना। अगर तीन चीजें जीवन के अंदर हैं तो लौकिक जीवन में भी जीवन श्रेष्ठ माना जाता है और अलौकिक जीवन तो हमारा इन तीनों आधार से प्यारे बाबा ने बनाया है। बाबा ने हम सबको जो खुशी दी है वो खुशी हम बच्चों को अनेक प्राप्तियों के आधार से खुशी मिलती है। जीवन में खुशी ऐसे ही नहीं मिल जाती है। मनुष्य को खुशी कब होती है? जब उसको कुछ मिलता है, कुछ प्राप्त होता है तो खुशी मिलती है। और अगर प्राप्ति नहीं होती है तो खुशी नहीं आ सकती है। तो बाबा ने हम सबको जीवन के अंदर क्या दिया है? बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ कि बाबा से हम बच्चों को क्या प्राप्तियां हुई है। हम भगवान के बने हैं तो भगवान के बनने से हमें क्या क्या मिला है? अगर देखें तो बाबा ने हम सबके जीवन में क्या नहीं दिया है? अनेक प्रकार की प्राप्तियां बाबा ने हम सबको कराई है, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, बाबा ने हम सबको अनेक प्रकार की प्राप्तियां कराई हैं। लौकिक जीवन के अंदर भी मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य को क्या चाहिए है? कहते हैं रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, संबंधों में सुख मिले तो सब कुछ मिल गया। आज संसार के अंदर ये सब तो मिल जाता है, रोटी भी मिल जाती है, कपड़ा भी मिल जाता है, मकान भी मिल जाता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन जो संबंध हैं उन संबंधों में जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती है। जो भी संबंध हैं उन संबंधों के अंदर स्वार्थ भर गया है तो संबंधों का जो सुख है वो सुख खत्म हो गया है। बाबा ने हम आत्माओं के अंदर जो सुख भरा है हम सबसे, बाबा ने सर्व संबंध बनाए। हम आत्माओं के बाबा के साथ सर्व संबंध है और बाबा ने सर्व संबंधों के रस हम सब आत्माओं के अंदर भर दिए हैं। तो जब हम आत्माओं को प्यारे बाबा से सर्व संबंधों का सुख मिलता है तो बाकी सभी संबंध क्या लगते हैं है? फीके लगते हैं। उन संबंधों की प्राप्ति के पीछे हम आत्माएं भागती नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा अप्राप्ति होती है तो प्राप्ति के लिए भागती है और अप्राप्ति नहीं है तो वो भागेगी नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों के अंदर हरेक प्रकार की प्राप्ति भरी है, हरेक प्रकार का बाबा ने हम बच्चों को खजाना दिया है, गुणों का खजाना दिया है, शक्तियों का खजाना दिया है, अनेक प्रकार के खजाने बाबा ने हम बच्चों के आगे रखे हैं। कितने खजाने, योग का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है और साथ साथ पुण्य का खजाना है। हम आत्माओं को बाबा ने इतना पुण्य आत्मा बना दिया, श्रेष्ठ आत्मा बना दिया, महान आत्मा बना दिया। आज संसार की नजरों के अंदर बाबा ने हम बच्चों को कितना ऊंचा स्थान दिया है। हम सभी भले सोचते हैं कि हम साधारण आत्माएं हैं, लेकिन वास्तव में हम सभी साधारण नहीं लेकिन असाधारण आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। महान आत्मा किसको कहा जाता है वो बाबा ने हम बच्चों को सारी डेफिनेशन सुनाई कि महान आत्मा किसको, पुण्य आत्मा किसको कहा जाता है। तो बाबा के हम बच्चे महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पुण्य आत्माएं हैं। तो हम सबका भाग्य किसने रचा है? भगवान ने रचा है, अपना बना करके बाबा ने हम सबको भाग्य दिया है। और बाबा ने इस संसार के अंदर हम सब आत्माओं को कौन सी स्टेज पर बिठाया है। जो स्टेज कोई भी धर्म आत्माएं या जो भी संसार में अपने को महान समझते हैं उनको प्राप्त नहीं होती है। हम सभी आज प्यारे बाबा के दिल के तख्त पर बैठे हुए, तब बाबा हम बच्चों को क्या कहता है कि तुम सभी मेरी दिल तख्त नशीन आत्मा हो। बाबा जब हम आत्माओं को एक एक टाइटल देते, एक एक स्वमान देते, तो हम सब मनुष्य आत्माएं बाबा के बच्चे उन टाइटलों को सुन करके कितना खुशी में नाचते हैं। बाबा हम बच्चों को स्वमान भी देता तो साथ साथ वरदान भी देता है। बाबा हम बच्चों को वरदानों से पाल रहा है। भक्ति के अंदर मनुष्य एक वरदान प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करते थे और तपस्या करने के बाद अगर भगवान प्रसन्न हो जाता था तो कहते थे कि जो चाहे सो वरदान मांग लो। तो एक वरदान या दो वरदान मांगते थे और बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं, एक या दो वरदान नहीं देते, लेकिन बाबा हम बच्चों को अनेक वरदान, वरदानों से पाल रहा है। वरदान नहीं लेकिन वरदानों से बाबा हम बच्चों को पाल रहा है। रोज हम बच्चों को बाबा अनेक वरदान देते हैं। हम वरदानों में पल रहे, वरदानी आत्माएं हैं, तो हम वरदानी आत्माओं का भाग्य बाबा रोज सिमरन करता है। अमृत वेले से बाबा कहते बच्चे अपने वरदान को, भाग्य को क्या करो, सिमरन करो। और जितना हम अपने भाग्य का सिमरन करते हैं, जितना बाबा से हम बच्चों को जो प्राप्ति हुई है उस प्राप्ति का सिमरन करते हैं, उतनी हम आत्माओं को क्या मिलती है, खुशी मिलती है। और खुशी जितनी हम आत्माओं को मिलती है, उस खुशी के आधार से हमारा जीवन क्या बन गया है, सरल बन गया है। बाबा ने हम सबका जीवन कितना सरल और स्मूथ बना दिया है। आज जीवन तो हम सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन के अंदर खुशी होने के कारण हम कैसे सहज रीति से चल रहे हैं। दुनिया वाले आज हम सबके जीवन को देखकर, हमारी धारणाओं को देखकर लोग कहते हैं आप कैसे चलते हैं, आपकी जीवन की धारणाएं तो बहुत कठिन है, मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं, हमें कोई बात मुश्किल लगती है, हम सबको जो भी बातें हैं वो क्या लगती हैं, सहज लगती है। सहज क्यों लगती है, क्योंकि एक तो बाबा ने हम बच्चों को हर बात सहज करके समझाई, इसीलिए सहज लगती है। और दूसरी, हम बच्चों को बाबा ने, बाबा के साथ इतना प्यार है, जो बाबा की बातों को हम बच्चे सहज रीति से कर लेते हैं। कोई भी कार्य मुश्किल तब लगता है जब प्यार नहीं होता है और मार्गदर्शन नहीं होता है। तो बाबा ने हम सबको पहले पहले क्या किया है, अपने प्यार में बांध लिया है। और प्यार में भी बाबा ने कैसे बांधा है कि बाबा ने पहले ही आकर हम बच्चों के साथ कौन सा संबंध जोड़ा है, कि बच्चे तुम सभी क्या हो, मेरे बच्चे हो। जब हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारा मात पिता है, तो हम भगवान के बच्चे हैं, ये स्मृति ही हमारे जीवन में परमात्मा प्यार में डुबो देती है। और परमात्मा प्यार के अंदर हम आत्माएं जब खो जाती हैं, तो प्यार में कोई भी कार्य कभी भी मुश्किल नहीं लगता है। कहते हैं ना, जहां प्यार है वहां कोई मुश्किलात नहीं है। प्यार में त्याग, प्यार में तपस्या, प्यार में समर्पणता सहज हो जाती है। आज लौकिक दुनिया के अंदर भी जहां प्यार होता है, तो प्यार के पीछे लोग जीवन कुर्बान भी कर देते हैं। हमारा तो प्यार परमात्मा प्यार है, उस प्यार के अंदर हम जीवन कुर्बान नहीं करते, लेकिन जीते जी मरकर बाप के बन गए हैं। और बाप के बनकर के बाबा जो हम बच्चों को कहता है वो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार हो जाते हैं? एक तो प्यार है, और दूसरा बाबा ने हम बच्चों को हमारे सामने प्राप्ति क्या है वो रख दी है, इसीलिए प्राप्ति को देख करके कोई भी कार्य करना सहज हो जाता है। अगर प्राप्ति न होती तो करना क्या होता है? मुश्किल होता है। अगर मनुष्य को प्राप्ति होती है तो मनुष्य कहां से कहां चला जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को प्राप्ति बताई कि बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्या बनाने आया हूं। बाबा ने लक्ष्य दिया कि मैं सभी आत्माओं को, तुम सभी आत्माओं को देव आत्मा बनाने के लिए आया हूं। मैं तुम बच्चों को सत्युगी नई दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं। मैं तुमको देवता बनाने के लिए आया हूं। तो बाबा ने हम सबको प्राप्ति सामने दे दी, तो प्राप्ति के आधार से हम बच्चे जो चाहे सो कर सकते हैं। बाबा हम बच्चों को जो कहते हैं वो करने का हम सबको क्या होता है, संकल्प होता है, कि बाबा ने कहा और मुझ आत्मा को करना है। भले करने में कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी संकल्प होता है, कभी दृढ़ संकल्प होता है। संकल्प में कभी दृढ़ता नहीं होती है, तो करने में भले थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है तो करने का हरेक का लक्ष्य होता है। और कभी भी मन के अंदर ये संकल्प नहीं आता है कि हमें नहीं करना है। हमेशा यही संकल्प आता है कि बाबा ने कहा है और हम बच्चों को करना है। तो क्यों आता है? क्योंकि बाबा से हम सब आत्माओं का प्यार है, और बाबा ने प्यार भी संबंध के आधार से जोड़ा है। ऐसे ही प्यार नहीं दिया है, लेकिन संबंध जोड़ करके बाबा ने हम सबको प्यारा बनाया है। तो प्यारा बने, हम प्यारे बने हैं, और प्यार के आधार से साथ में बाबा ने प्राप्तियां भी दिखा दी, जिन प्राप्तियों के आधार से हम बच्चों का पुरुषार्थ सहज हो गया। तो पुरुषार्थ करते करते हम सभी प्यारे बाबा के क्या गाते हैं, गुण गाते हैं। बाबा के भी गुण गाते साथ साथ अपने भाग्य के भी गुण गाते हैं कि वह मेरा भाग्य जो भगवान ने मुझ आत्मा को क्या किया, अपना बना लिया है। और अपना बना करके विशेष वो एक गीत हमेशा हम सुनते हैं, याद आता है कि भगवान के तो बने, लेकिन भगवान ने मुझ आत्मा को चुना और चुन करके अपने कार्य के लिए मुझ आत्मा को बाबा ने चुन लिया है। तो हम कितने महान आत्माएं हैं, कितने भाग्यवान आत्माएं हैं जो बाबा ने कोटों में कोऊ कोऊ में से भी कोऊ में से निकाल करके मुझ आत्मा को अपना बनाया और अपना बना करके साथ साथ क्या किया, बाबा ने हम सबको अपने कार्य में भी सहभागी बनाया है। तो कार्य में सहभागी बने, भगवान ने मुझे चुना, ये हमें इतनी खुशी देती है और इसी के आधार से हम अपने भाग्य का भी सिमरन करते हैं। तो भाग्य बाबा ने प्राप्ति के आधार से बनाया और प्राप्ति के आधार से ही हमारे जीवन में खुशी भी आई है और साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का खजाना कितना दिया है। रोज बाबा की मुरली हम सभी सुनते हैं, बाबा हम बच्चों को कितना खजाना देता है। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे मैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देता हूं, जो एक एक रत्न क्या है, लाखों रुपए का है। एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपए है और बाबा हम बच्चों को रोज कितने रत्न देता है। अगर हम उन रत्नों को गिनती करें तो कितने हो जाएंगे, अनेक रतन बाबा देते हैं रोज। इसीलिए तो कहा कि एक रतन से पद्मा पद्म पति बन जाते हैं, पद्मों की कमाई होती है। तो पद्मों की कमाई बाबा हम बच्चों की करा रहा है। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान के खजाने से भरपूर किया, हर प्रकार की बाबा हम बच्चों को समझ देता है। तो समझ के आधार से हम आत्माएं कितना श्रेष्ठ बन रही है। तो ज्ञान का खजाना भी दिया। अभी बाबा की एक मुरली चली थी 4-5 दिन पहले, बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को ज्ञान के खजाने से शाहूकार बनाता हूं। और शाहूकार कैसे बनाता हूं, वो बाबा ने विधि सुनाई थी। जैसे बाबा ने कहा, कहते हैं कि एक के साथ एक बिंदी लगाओ तो 10 होता है और 10 के साथ 2 बिंदी लगाओ तो 100 होता है, 100 के साथ एक बिंदी और लगाओ तो 1000 होता है। बाबा ने कहा ऐसे बिंदी लगाते जाओ तो क्या होगा, है कितना बढ़ता जाएगा। ऐसे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे भी अगर बिंदी लगाते जाओ तो तुम कितने शाहूकार बन जाएंगे। और बिंदी के लिए भी बाबा ने कहा कि तुम आत्मा भी बिंदी हो। तो बिंदी कैसे लगानी है कि स्वयं को आत्मा समझ, मैं आत्मा बिंदी और मैं आत्मा बिंदी परम पिता परमात्मा बिंदी की संतान हूं और साथ में ये ड्रामा भी बिंदी है और इस ड्रामा की बिंदी को लगाएंगे, ये तीनों बिंदी की अगर स्मृति रखेंगे तो तुम बच्चे बहुत 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 क्या बन जाएंगे, शाहूकार बन जाएंगे। तो हम सभी कई बार स्वयं को आत्मा समझ करके बिंदी लगाते हैं, साथ साथ बिंदु परमात्मा को भी याद करते हैं, साथ में ड्रामा भी याद रहता है। लेकिन ड्रामा याद करते करते कभी कभी ड्रामा क्या हो जाता है, भूल जाता है। और जब ड्रामा भूल जाता है तो फिर क्या होता है, जो 2 बिंदी आगे की है वो भूल जाती है। अगर ड्रामा बिंदी याद रहे तो वो 2 बिंदी भी याद रहेगी। तो ड्रामा बिंदी नहीं लगती है, ड्रामा की बिंदी लगानी। बाबा ने कहा कि बीती को कभी भी स्मृति में नहीं लाना है। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है, हर एक आत्मा अपना पार्ट बजाती है, हर कार्य का ड्रामा फिक्स है। तो बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान देकर, अगर ड्रामा का ज्ञान हमारी बुद्धि के अंदर नहीं है तो हम अपने स्वमान में नहीं रह सकते। और जब तक स्वमान में नहीं रहेंगे तब तक हम आत्मा को प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये तीनों बिंदियां सदैव याद रखो तो तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना बहुत भरपूर होता जाएगा और तुम आत्माएं बहुत 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 क्या बन जाएंगी, शाहूकार बन जाएंगे। और तीसरी बात आती है खुराक है? और बाबा ने हम बच्चों को खुराक भी कौन सी दी है, ज्ञान के साथ साथ योग के आधार से हम अपने जीवन के अंदर शक्तियां लाते हैं। जैसे खुराक है, खुराक खाने से शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे ही बाबा ने कहा जीवन में आत्मक शक्ति लाने के लिए हमें क्या चाहिए, पावरफुल योग चाहिए। हमारा योग इतना वंडरफुल है जिसके आधार से हम आत्माएं अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त करते हैं, साथ साथ हम अपने योग के आधार से मन इच्छित फल भी प्राप्त करते हैं कि जो हम आत्माएं इच्छाएं रखते हैं वो इच्छाएं भी हमारी योग की ताकत के आधार से पूरी हो जाती हैं। कई बार हम कितने भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं, कहते हैं कि हमने योग के द्वारा अपने इस कार्य को सिद्ध किया, योग के द्वारा इस कार्य को सिद्ध किया। योग की शक्ति अनेक कार्यों को सिद्ध करती है। योग की शक्ति एक करामात है, जैसे करामात दिखाने वाले करामात दिखाते हैं जो असंभव को भी संभव करके दिखा देते हैं, ऐसे हमारी योग की शक्ति भी क्या करती है, करामात दिखाती है, अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कराती है। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे अपने योग के प्रयोग करो, तो जितना हम योग के प्रयोग करते जाते हैं और प्रयोग के आधार से हम आत्मा प्रयोगी बन अनेक प्रकार की शक्तियां अपने पास जमा करते हैं और जिन शक्तियों के द्वारा हम स्वयं भी शक्तिशाली बनते हैं तो साथ साथ अनेकों की को भी उस शक्ति का आधार दिखाते हैं, अर्थात शक्ति से प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को विशेष अनेक प्रकार की शक्तियां देकर शक्तिशाली बनाया है। आज बाबा जब सोमान देते हैं तो एक शक्ति नहीं, अनेक शक्तियां। कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान के बच्चे हम सभी क्या हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो अनेक शक्तियां बाबा ने हम बच्चों को दी हैं, जिन शक्तियों के आधार से हम सबका ये जीवन चल रहा है और जीवन को चलाते चलाते शक्तियों से भरपूर होते हम आत्मा अभी श्रेष्ठ बनती जा रही है। तो हम सभी अपने भाग्य के जितने गुणगान करना चाहे उतने कम हैं। बाबा कभी कहते हैं कि बच्चे सदैव अपने भाग्य का गुणगान करो, वहारे मैं। तो वहारे मैं क्या हूं, वहारे मैं स्मृति में आया तो वहारे मैं भगवान का बच्चा हूं। और भगवान का बच्चा क्या है, जो भगवान ने मुझे अपना बनाकर अपने दिल तख्त पर बिठाया है और हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। हमारा स्थान भगवान ने कौन सा रखा, दिल तख्त। तो भगवान के दिल तख्त पर कौन बैठेगा, कभी सोचे है कि भगवान के दिल तख्त पर बैठने के लिए क्या करना होगा, दिल तख्त पर किसको स्थान मिलेगा। वैसे भी जब तख्त पर बैठते हैं तो तख्त पर ऐसे ही नहीं बैठ जाते हैं, तख्त पर जब बिठाते हैं तो पहले तिलक लगाते हैं और साथ साथ ताज भी पहनाते हैं। तिलक और ताज पहनाते हैं और दोनों पहना करके फिर तख्त पर बिठाया जाता है। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चे बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए हमें क्या चाहिए? तिलक और ताज चाहिए। तो तिलक कौन सा देना है और ताज कौन सा? तिलक है स्मृति का तिलक, जो बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दी। क्या स्मृति दी? कि तुम कौन हो। सदैव ये स्मरण करो कि तुम कौन हो। हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, हम महान आत्मा हैं, हम देव आत्मा हैं, हम पुण्य आत्मा हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। कितनी बाबा ने स्मृतियां दिया। तो स्मृति का तिलक और ताज, और ताज भी कौन सा? बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को डबल ताजधारी बनाता हूं। संगर पर भी डबल ताजधारी तो भविष्य में भी डबल ताजधारी। संगम पर बाबा हम बच्चों को दो ताज देते हैं। एक है लाइट का ताज अर्थात पवित्रता का ताज, और दूसरा ताज है, जिम्मेवारियों का ताज। तो जितना हम आत्माएं पवित्र बनेंगी उतनी हमारी पवित्रता के आधार से आत्मा के अंदर शक्ति भरेगी, चमक भरेगी। तो पवित्रता का ताज और साथ साथ जिम्मेवारियों का ताज। बाबा ने हम बच्चों को कौन सी जिम्मेवारी दी है? एक स्व की जिम्मेवारी दी है और साथ साथ सेवा की भी जिम्मेवारी दी है। और सेवा की जिम्मेवारी में भी बाबा ने अनेक प्रकार की सेवाएं बताई हैं। यज्ञ की सेवा है। यज्ञ की सेवा हम जितनी करेंगे तो सेवा करने से हमें जिम्मेवारी मिलती है और जिम्मेवारी से हम सेवा करते हैं। आज आप सभी बाबा के यज्ञ की सेवा करने के लिए आए। जितना यज्ञ की हम दिल से सेवा करते हैं और दिल से सेवा करने वाले को क्या मिलता है? दिल का प्यार मिलता है। और दिल का प्यार जितना मिलता है, दिल से सेवा करते हैं, तो जिम्मेवारियां बाबा की जितनी हम सेवा से उठाएंगे उतना हमको जिम्मेवारी का ताज मिलेगा। और यहां जितनी जिम्मेवारियां हम उठाएंगे इन जिम्मेवारियों के आधार से ही हमें भविष्य का क्या मिलेगा? ताज मिलेगा। यहां की जिम्मेवारियां अगर हम नहीं उठाते, सेवा की जिम्मेवारियां नहीं उठाएंगे, तो हमें वो ताज भी क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? बाबा ने कहा ताज तो दिया, लेकिन ताज के अंदर भी क्या चाहिए? रतन चाहिए। अनेक प्रकार के रतन होते हैं तब ताज शोभनीक लगता है। अगर एक भी रतन कम होगा तो ताज की शोभा नहीं होती है। तो यहां भी बाबा ने हम बच्चों को जो जिम्मेवारियों का ताज दिया है उसके अंदर भी वैरायटी प्रकार के रतन अर्थात वैरायटी प्रकार की सेवा, तन से, मन से, धन से, संकल्प से, श्वास से, मन से, वचन से, कर्म से, ये सभी हमको क्या लगाने हैं? रतन लगाने हैं। तो इन रतनों से लगाकर हम बच्चे जितनी जिम्मेवारी बाबा की उठाते हैं उतना हमें ये जिम्मेवारी का ताज संगम पर मिलता है। और जिम्मेवारी के ताज के आधार पर ही हम आत्माएं भगवान से अपना भाग्य प्राप्त करते हैं। भगवान से प्राप्त भाग्य प्राप्त करने के लिए संगम पर भगवान के यज्ञ की जितनी हम जिम्मेवारी उठाएंगे उतना हम भाग्यशाली आत्मा बनेंगे और भगवान के दिल तख्त पर बैठेंगे। बाबा किसको याद करता है? जो बाबा के सेवाधारी आत्माएं हैं। बाबा कहता है ना कि बच्चे सेवा के आधार से तुम भाग्य बनाते हो। भाग्य बनाने की विधि बाबा ने हम बच्चों को क्या दी है? सेवा दी है। तो जितना हम दिल से, प्यार से, स्नेह से, जिम्मेवारी से सेवा करते हैं, उतना हम बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, और जितना हम बाबा के दिल पर चढ़ते हैं उतना बाबा हमारे भाग्य का गुण गाता है। तो साथ साथ देवी परिवार भी गुण गाते हैं, साथ साथ औरों की भी दुआएं मिलती हैं, ये दुआएं भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। तो संगम पर दुआएं भी लेनी है, संगम पर पुण्य आत्मा भी बनना है, पुण्य भी जमा करना है। पुण्य किस आधार से मिलेगा? पुण्य मिलेगा सेवा से, दुआएं मिलेंगी सेवा से। जितनी हम सेवा दिल से करते हैं उतनी दुआएं मिलती हैं। आज देखो, किसी की दुआ ऐसे ही नहीं मिल जाती है। किसी ने किसी के ऊपर कोई उपकार किया होता है तो नेचुरल दिल से उसके लिए क्या निकलती है? दुआ निकलती है कि इसने मेरे को ये दिया। अगर किसी ने कुछ दिया ही नहीं होता है तो कोई किसी को याद नहीं करता है। जैसे देखो, कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसको ठीक कर देता है, असंभव बीमारी होती है तो संभव कर देता है, तो सदैव उसको याद करते, मेरे को उसने ये दान दिया, मेरा ये ठीक किया, मेरे ऊपर ये उपकार किया, उसका ही सिमरन करता है। तो ऐसे ही दुआएं उनको मिलती हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को कुछ देते हैं। अगर कोई किसी को कुछ देगा नहीं तो कैसे दुआएं मिलेंगी? तो हम सभी तो भाग्यवान आत्माएं हैं जो बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाकर दुआओं का भंडार भरपूर करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को सेवाधारी बनाया। हम सभी सेवाधारी बाबा की सेवा में उपस्थित हैं, तो सेवा से हम सभी अपना भाग्य बना रहे हैं। अपना भाग्य बनाने के लिए भगवान ने हम सबको यहाँ बिठाया है, भाग्य बनाने के लिए भगवान ने हम सबको चुना है, ये भी हमारा भाग्य है। तो हम सभी भगवान के घर में बैठकर अपना भाग्य बना रहे हैं। तो हम सब कितनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हैं। अपने भाग्य का अगर हम सिमरन करते चलें तो हमारा जीवन बहुत ही खुशी से भरपूर हो जाएगा। तो बाबा को हम बच्चे कितना ना थैंक्स दे, रोज बाबा को थैंक्स देते हैं ना, और बाबा का कितना ना शुक्रिया अदा करें कि बाबा ने हमको अपना बनाकर हम सब आत्माओं को भाग्यशाली बनाया है। भाग्यशाली बनकर हम भगवान के घर में बैठे हैं, और भगवान के घर में बैठकर क्या कर रहे हैं? भगवान के घर की सेवा कर रहे हैं। देखो, भगवान के पास बैठना, भगवान के घर में बैठना और भगवान के घर की सेवा करना, ये कितना ऊंचा भाग्य है। ये भाग्य किसको मिल सकता है? भगवान के घर की, भगवान के यज्ञ की, जो भगवान ने यज्ञ रचा है उस यज्ञ की हम सभी सेवा कर रहे हैं। ये सेवा का गोल्डन चांस मुझ आत्मा को मिला है, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो सौभाग्य को सदैव अगर हम सिमरन करते चलें तो सिमरन करने से ही हमारा भाग्य बनता जाएगा। तो बाबा हम सबका भाग्य बनाने के लिए आया है और भाग्य बना रहा है। हम अपना तो भाग्य बना ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ बाबा ने हम सबको कहा कि बच्चे अपना भाग्य भी बनाओ और दूसरों का भी भाग्य बनाओ। खाली खुद का नहीं बनाना है, लेकिन साथ साथ औरों का भी भाग्य बनाना है। जब औरों का भाग्य बनाएंगे तभी हमारा भाग्य जमा होगा। सिर्फ अपना बना लिया, अपना खा लिया और अगर दूसरों को नहीं दिया तो जमा कैसे होगा। तो जमा करने के लिए स्वयं का भी बनाना है तो साथ साथ दूसरों का भी बनाना है। तो दूसरों का बनाने की विधि भी बाबा ने हम बच्चों को अनेक प्रकार की सुनाई है कि बच्चे ऐसे भाग्य बनाओ, ऐसे सेवा करो, सेवा से ही भाग्य बनेगा। सेवा भी बाबा ने हम बच्चों को अनेक प्रकार की दी है, भिन्न भिन्न प्रकार की बाबा ने सेवा बताई, मन वचन कर्म तन मन धन, हाँ जो चाहे वो सेवा कर सकते हो। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे कहते बाबा हमसे ये कार्य नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बाबा हमेशा कहते अच्छा बच्चे तुमसे ये नहीं हो सकता है तो मनसा सेवा तो कर सकते हो ना, अच्छा तन ठीक नहीं है तन से नहीं कर सकते नहीं करो, धन नहीं है तो नहीं कर दो, हाँ लेकिन मनसा तो कर सकते हो, मनसा शकास तो दे सकते हो, मनसा सेवा तो कर सकते हो। तो बाबा ने हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा सिखाई, जिस सेवा से हम बाबा के बच्चे अपना भाग्य बना रहे हैं। तो हम सभी कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान ने हम सबको क्या किया है, चुन करके भाग्य बनाने के लिए भगवान ने हम सबको अपने पास बुला लिया है। तो जितना हम सभी भाग्य का सिमरन करते हैं उतनी खुशी होती है और उतना ही भाग्य बनता है। खुशी के आधार से ही हम जितनी बाबा की सेवा करते हैं तो सेवा भी अथक होकर कर सकते हैं। अगर सेवा में थकावट होती है उसका मूल कारण है हमें खुशी नहीं है। अगर खुशी है, उमंग उत्साह है, तो हम सेवा में कभी भी थक नहीं सकते। और जब सेवा करते हैं और सेवा किसकी है और सेवा के लिए मुझे किसने चुना है, ये दो बातें अगर याद हैं, सेवा के लिए किसने चुना है और सेवा किसकी है, ये स्मृति में है तो कभी भी थकावट नहीं होती। सेवा से कहते हैं ना, जितनी सेवा करते हैं सेवा करने वाला क्या करता है, मेवा खाता है। सेवा करे और मेवा मिले, मेवा कौन सी है, खुशी की मेवा। बाबा हम बच्चों को रोज खुशी देकर इतनी खुशी देता है जिस खुशी के आधार से कभी भी कोई थकावट नहीं होती है। और खुशी खुशी से हम सेवा करते हैं और सेवा कर अपने पुण्य का खाता जमा करते हैं। तो बाबा हम बच्चों से अभी पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, भाग्य का खाता अभी भरपूर करा रहा है। हम आत्माओं को इतना भरपूर कर रहा है जो हम सभी इतना अपना खजाना जमा कर लेते हैं, जो सारे कल्प 5000 वर्ष बैठ करके क्या करेंगे, खाएंगे। अभी कमाते हैं और जमा करते हैं और 5000 वर्ष पूरा बैठ करके आराम से खाते हैं। 21 जन्म सतयुग में पूरा खाया और द्वापर से भी पूज्य बन करके भी हम आत्माएं कितना अपना जमा किया हुआ खाता खाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को विशेष अभी भरपूर कर रहा है। भगवान ने हमें चुनकर भरपूरता का वरदान दिया है। इस वरदान को सदैव हम स्मृति में रख करके चलते चलें तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होगा। सदैव अपने भाग्य के गुण गाते चलो, भगवान भी भाग्य के गुण गाता है और हम बच्चे भी अपने भाग्य के गुण गाते रहे। देखो बाबा भी हम बच्चों को विशेष जब आते हैं तो क्या करते हैं, अभी बाबा हम बच्चों को ज्ञान नहीं सुनाता है, बाबा कहते बच्चे मैंने ज्ञान से तुम बच्चों को क्या किया, भरपूर कर दिया। लेकिन अभी बाबा क्या करता है, बच्चों के गुण गाने आता है। देखो रोज की बाबा की अभी जो मुरली चलती है उसमें बाबा क्या करता है, हमारे गुण गाता है। वाह रे बच्चे वाह, वाह बाबा वाह हम कहते हैं, और बाबा हम बच्चों को क्या कहता है, वाह मेरे बच्चे वाह। तो जब बाबा वाह वाह करता है तो हमको कितना नशा चढ़ता है, कितना खुशी में झूमते हैं कि वाह मेरा भाग्य है जो भगवान हमारे भाग्य के गुण गा रहे हैं। तो भगवान हमारे भाग्य के गुण गा रहे हैं, तो भगवान गुण गा रहा है, और ऐसा भाग्यवान किसने बनाया, बाबा ने बनाया। तो बाबा ने हमको ऐसा भाग्यवान बनाया, और हम भगवान के ऐसे भाग्यवान बच्चे बने, क्योंकि हमने भी बाबा को पहचाना और बाबा के बने, तब बाबा हमारे गुण गाता है। अगर हम बने ना होते तो बाबा हमारे गुण गाता है? हम बने तो बाबा हमारे गुण गाता है ना। अगर हम बने ना होते तो बाबा गुण गाता, तो हम भी बने कि हमने बाप को पहचाना, बाबा को जाना, बाबा के बने, बाबा को माना, और बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, तो हम बने तो भगवान भी हमारे गुण गाता, और हम भी भगवान के गुण गाते कि भगवान ने मुझे क्या किया, अपना बना लिया। तो सदैव भगवान के गुण गाते चलेंगे तो ये जीवन हमारी बहुत ऊंची और श्रेष्ठ बन जाएंगी। हमें पुरुषार्थ के अंदर कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं आएंगी, क्योंकि बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ की इतनी सहज युक्तियां बताता है, जिस आधार से हम पुरुषार्थ सहज रीति से कर रहे हैं। कोई पुरुषार्थ के अंदर कोई भी प्रकार की हम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। बाबा हर प्रकार की हम बच्चों को शिक्षा देकर, सावधानी देकर, प्यार देकर हमारे भाग्य को बना रहा है। तो हम बाबा के बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली बच्चे हैं। सदैव अपने भाग्य के गुण गाते चलो, और औरों का भी भाग्य क्या करो, बनाते चलो। जितना हम औरों का भाग्य बनाते चलेंगे उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा, और श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा तो बाबा भी हमारे गुण गायन करेंगे, तो और आत्माएं भी हमारे गुण गायन करेंगी। और जितना संगम पर हमारे गुणों का गायन होगा उतना ही हम सतयुग में पूजे जाएंगे, और जितना सतयुग में हम महान आत्मा बनेंगे, पूज्य आत्मा बनेंगे, फिर द्वापर से उतने ही हमारे भक्त भी गुणगान करेंगे। भक्त भी ऐसे ही गुणगान नहीं करेंगे, जितना हम भाग्यवान बनेंगे, भाग्यशाली बनेंगे, उतना भक्त भी हमारे गुणों का गायन करेंगे। तो हम ऐसे भाग्यवान आत्माएं हैं जो हम देव आत्मा बनकर द्वापर से पूजे जाएंगे, और बाबा ने हम बच्चों को ऐसा पूज्य और देव बनाया है। तो बाबा के भी गुण गाते रहें, साथ साथ अपने भाग्य के भी हम गुण गाते रहें। ये गुण गाते गाते संगम युग हमारा क्या है, गुणगान करने का युग है। इस युग के अंदर हम बाबा के साथ साथ संगम का भी गुण गाएं, के संगम पर बाबा ने हम बच्चों को ऐसा बनाया, ऐसा भाग्य दिया, और हमें भाग्यशाली बनाया, और हम भगवान के बच्चे बनकर अभी अपने भाग्य को बनाते चल रहे हैं, और आगे भी चलते रहेंगे। ओम शांति।
है ये प्रभु।